प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हमारे वक्ता आज के प्रवचन को आरम्भ करें, सुनते हैं ये मधुर गीत।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से योना नबी की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने इसके दूसरे अध्याय को आरम्भ किया और दूसरे अध्याय में हमारा मुख्य विषय ये था कि योना मछली के पेट में जीवित था या वह मृतकों में से जीवित किया गया। इसमें हमने दो प्रकार की विचारधाराओं को देखा। कुछ लोग इस बात के पक्ष में हैं कि योना मच्छ के पेट में जीवित था, किंतु हमारा विचार यह है कि वह मछली के पेट में मर गया था और परमेश्वर ने उसे पुनः मृतकों में से जीवित किया। सो इसी विषय को लेकर हम आज भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, किंतु इससे पूर्व के हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु, प्रेमी और कृपालु करुणामय परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने अपनी बड़ी करुणा से हमको प्रदान किए हैं कि हम अपने व्यस्त जीवन में आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना वचन हमें सिखाएं, हमारे लिए वास्तविक बनाएं, ताकि प्रभु हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है, क्लेश परेशानी मुसीबत में है या किसी निराशा में है, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि योना ने उस मच्छ के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और उसने कहा, संकट पड़ने पर मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया, मैंने सहायता के लिए अधोलोक की गहराई से पुकारा और तूने मेरी सुन ली। ये योना की साक्षी है। यदि आप इस विचारधारा के पक्षधर हैं कि योना मच्छ के पेट में जीवित था, तो आपके साथ बहुत से लोग हो सकते हैं, आप बहुत संख्या में हो सकते हैं। किंतु यदि आप हमारी व्याख्या को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर योना को मछली के पेट में से जीवित करता है, वह उसका पुनरुत्थान करता है, वह उसको पुनः जीवित करता है, तो आप बहु संख्या में नहीं होंगे, आप अल्प संख्या में होंगे। तो अभी मैं इस बात को गंभीरता व सतर्कता के साथ स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि परमेश्वर योना को मच्छ के पेट में जीवित रखने के योग्य था या नहीं। परमेश्वर उसे जीवित रखता था, वो उसको जीवित रख सकता था, परंतु प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर ने योना को मच्छ के पेट में जीवित रखा? क्या उसको जीवित रखना आश्चर्यजनक बात थी, अथवा क्या ये बात आश्चर्यजनक थी कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया? क्योंकि यह पुस्तक पुनरुत्थान का चित्रण करती है, मेरा विचार है कि परमेश्वर ने योना को मृतकों में से जीवित किया था। आचार्य वर्नन मैगी का कहना है कि मुझे कुछ सेमिनरी के लोगों के बीच में कार्य करने का अवसर हुआ। सेमिनरीज में योना की पुस्तक का अध्ययन कराने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अनुभव किया कि इस विचार के द्वारा विद्यार्थियों के आत्मिक ज्ञान में वृद्धि हुई है, उन्हें लाभ हुआ है और उन्होंने इस विचार को स्वीकार किया। यदि आप मेरे विचार के विपरीत विचार रखते हैं, अर्थात आप ये विचार रखते हैं कि योना मछली के पेट में जीवित था, तो मेरे विचार से क्रुद्ध ना हो, झुंझलाएं भी नहीं, क्योंकि यह असंख्य सेमिनरी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी विचार है। ये विचार उस विद्यार्थी की सेमिनरी के अनेक विद्यार्थियों को मसीह यीशु के उद्धार के ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ है, जिससे मेरी बातचीत हुई थी, जिसके सामने मैंने इस विचार को व्यक्त किया था कि परमेश्वर ने योना को मछली के पेट में पुनः जीवित किया। प्रश्न ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति मछली के पेट में जीवित रह सकता है या नहीं। श्रोता, लोगों को किसी विशाल मछली ने निगल लिया और वे अपनी कथा सुनाने के लिए जीवित रहे, इस प्रकार की अनेक कथाओं का लेखा उपलब्ध है। हम ऐसी अनेक घटनाओं को जानते हैं और इसलिए इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप यह विश्वास करते हैं कि योना मच्छ के पेट में जीवित था, तो यह कोई महान आश्चर्य कर्म नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों ने भी इस प्रकार का अनुभव किया है। आचार्य वर्नन मैगी इस संदर्भ में आगे बताते हुए कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक नगर में एक बाइबल शिक्षिका थी जिनका नाम सुश्री ग्रेस डब्ल्यू कैलॉग था। उन्होंने मुझे अपने द्वारा लिखित एक पुस्तक द बाइबल टुडे, अर्थात आज की बाइबल की एक प्रतिलिपि भेंट की। वह भी पुरानी विचारधारा की पक्षधर थी, अर्थात उनका विचार था कि योना मछली के पेट में जीवित था और वह चाहती थी कि मैं इस बात पर ध्यान दूं कि योना मच्छ के पेट में जीवित रह सकता था। निसंदेह मैं इस बात से सहमत हूं कि वह वहां जीवित रह सकता था, मुझे कोई संदेह नहीं है। और यदि योना ने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है कि योना वहां जीवित रह सकता था, और यदि योना ने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है, तो मैंने निश्चित रूप से योना को गलत समझा है। किंतु मैंने इससे भी अधिक उसे समझा है। मैं इस संदर्भ में किसी मनुष्य को कोई बड़ी मछली निगल ले और वह जीवित रहे, सुश्री कैलॉग द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक ऐसा उदाहरण जो सुश्री कैलोग द्वारा प्रस्तुत किया है, मैं आपको भी बताना चाहता हूं। इस संदर्भ में उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, किंतु उनमें से कुछ को मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुमारी कैलोग बताती हैं कि महासागर में दो ऐसे भी भीमकाय जीव हैं जो योना को निगल सकते थे, और वे भीमकाय जीव बैलेनोप्टेरा मस्क्यूलस, इन दो शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिए, बैलेनोप्टेरा और मस्क्यूलस, अथवा सल्फर बॉटम व्हेल। दूसरा शब्द है राइनोडॉन टाइपिकस, अथवा व्हेल शार्क। ये दो भीमकाय जीव हैं, इनके विषय में वो बताती हैं। इन समुद्री जीवों में से किसी के भी दांत नहीं होते हैं। इनका भोजन करने का ढंग बड़ा रुचिकर होता है। ये अपना विशाल मुंह खोलकर समुद्र में तीव्र गति से तैरते हैं और जल में पर्याप्त समय तक अपना विशाल जबड़ा बंद करने के पश्चात जो कुछ उसमें रह जाता है उसे वे निगल जाते हैं। सन 1933 में केप कोड में, ये स्थान का नाम है केप कोड, यहां एक सल्फर बॉटम व्हेल मछली पकड़ी गई। ये मछली का नाम है, जिसकी लंबाई 100 फीट के लगभग थी। उसका मुंह 10 या 12 फीट चौड़ा था, पर्याप्त बड़ा मुंह था उसका। उसने एक घोड़े को सरलता से निगल लिया था। इन विशाल मच्छों के पेट में 4 से 6 तक कक्ष अर्थात खाने होते हैं, जिनमें मनुष्य जाकर आराम से निशुल्क बस सकते हैं, रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वे वहां अपनी पसंद का कक्ष चुन सकते हैं। इस व्हेल के सिर में वायु कक्ष है, जहां ये वायु एकत्र कर सकती है। एक विस्तृत नाक की नली है, जिसकी ऊंचाई बहुधा 7 फीट, चौड़ाई 7 फीट तथा लंबाई 14 फीट तक पाई गई है। यदि कोई अनचाहा मेहमान या कोई वस्तु भीतर प्रवेश कर गई है और उसके लिए सिर दर्द बन गई है, तो वह निकट की सूखी भूमि पर जाकर उसे उगल देती है, जैसा योना के साथ हुआ। सो ये एक भीमकाय मच्छ के विषय में हमने आपको बताया, जो सुश्री कैलोग के अनुभव में आई है। एक अन्य घटना के अंतर्गत आचार्य रैनसम हार्वे ने अपने एक लेख में बताया कि एक बार एक जहाज पर से एक कुत्ता गुम हो गया, परंतु 6 दिन के पश्चात ये एक व्हेल मछली के सिर से जीवित और भौंकता हुआ मिला। सुनने में बड़ी विचित्र बातें हैं, किंतु ये सत्य है। फ्रैंक बुलेन, ये व्यक्ति का नाम है, फ्रैंक बुलेन नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में एक शार्क मछली के विषय बताते हुए लिखा, जिसकी लंबाई लगभग 15 फीट थी, एक व्हेल मछली के पेट में पाई गई। शार्क मछली जिसकी लंबाई 15 फीट थी, एक दूसरी व्हेल मछली के पेट में पाई गई। वह बताते हैं कि मरते समय व्हेल मछली अपने पेट की प्रत्येक वस्तु को बाहर उगल देती है, ये स्वाभाविक क्रिया है। उसके पश्चात आचार्य डिक्सन ने बताया कि सीरिया देश के बेरूत नगर में एक शार्क मछली का इतना बड़ा सिर है जो बड़े से बड़े आकार वाले मनुष्य को निगल सकती है। वह भूमध्य सागर में पाई जाने वाली ऐसी श्वेत शार्क मछली के विषय में भी बताते हैं, जिसे पूरा का पूरा घोड़ा निगल जाने का श्रेय प्राप्त है, अर्थात उसने पूरा का पूरा घोड़ा निगल लिया था। दूसरी मछली के विषय में श्रीमान डिक्सन बताते हैं कि उसने एक रेनडियर को, ये भी एक पशु का नाम है, एक रेनडियर को निगल लिया। उसके बड़े बड़े सींगों के कारण वह उसे पूरा नहीं निगल सके। ये सभी तथ्य ये दर्शाते हैं कि योना को या तो विशाल व्हेल मछली ने निगल लिया था, या फिर विशाल शार्क मछली द्वारा वह निगला गया। परंतु प्रश्न ये उठता है कि योना के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी विशाल मच्छ ने निगल लिया हो और वह अपनी कथा सुनाने के लिए जीवित रहा हो। हम इस विषय में दो व्यक्तियों के विषय में जानते हैं। फ्रांस देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीमान एम डी पारविले ने जेम्स बार्टले नामक व्यक्ति के विषय में अपनी एक पुस्तक में लिखा कि दक्षिण अमेरिका के फॉकलैंड द्वीप के निकट जेम्स बार्टले नामक व्यक्ति समुद्र में डूब गया। उसके लुप्त हो जाने के दो दिन पश्चात नाविकों ने एक विशालकाय व्हेल मछली का शिकार किया। जब इस मछली को काटा गया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसके पेट में दो दिन पहले खोए अपने मित्र को पाया, जो जीवित तो था किंतु मूर्छित अवस्था में था। बाद में वह होश में आ गया और इस साहसिक अनुभव के पश्चात अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है, अर्थात वह जीवित भी है और स्वस्थ भी है। एक अन्य घटना के अंतर्गत आचार्य हैरी राइमर, जो उत्तरी अमेरिका के लॉस एंजलिस नगर में विज्ञान शोध विभाग अर्थात रिसर्च साइंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं, एक अन्य घटना के विषय में बताते हैं। हमने लिटररी डाइजेस्ट नामक पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है, इस पत्रिका में एक अंग्रेज नाविक के विषय में एक विवरण पर ध्यान दिया, जिसे एक विशालकाय समुद्री मछली ने निगल लिया। संक्षिप्त कथा इस प्रकार से है कि इंग्लिश चैनल में शिकार करते समय जहाज पर समुद्र में ये व्यक्ति गिर गया और जब तक उसे वापस जहाज पर लिया जाता, एक विशालकाय शार्क मछली ने उसे निगल लिया। दुर्घटना के 48 घंटों के पश्चात यह मछली पकड़ी गई और नाविकों ने इसका पेट चीर डाला। जैसे ही नाविकों ने उसका पेट काटा, वे अपने मित्र को देखकर भौचक के रह गए। वह वहां जीवित था परंतु होश में नहीं था। वे शीघ्र ही उसे अस्पताल ले गए। निरीक्षण के पश्चात चिकित्सकों ने पाया कि वह व्यक्तिगत रूप से ठीक है। उन्होंने केवल ये पाया कि वह व्यक्ति दहशत अर्थात प्रघात से पीड़ित था। शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गया। विवरण इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ कि उस व्यक्ति को लंदन अजायब घर में प्रदर्शनी के लिए रखा गया और उसे देखने के लिए एक शिलांग, ये लंदन की मुद्रा का नाम है, एक शिलांग का टिकट लगाया गया और विज्ञापन के रूप में वहां लिखा गया 20वीं शताब्दी का योना। 1926 में आचार्य राइमर ने इस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से भेंट की और वह लिखते हैं कि वह अजीब सा दिखाई देता था। उसका शरीर बाल रहित था और उसके पूरे शरीर पर पीले व भूरे रंग के चकत्ते थे, निशान थे। अब यदि यह दो व्यक्ति दो रात और दो दिन समुद्री दैत्य के पेट में जीवित रह सकते हैं, तो क्या परमेश्वर का नबी परमेश्वर का प्रत्यक्ष देखभाल में तीन रात तीन दिन जीवित नहीं रह सकेगा? तो हम परमेश्वर के वचन पर क्यों संदेह करें? ये बात सत्य है कि योना परमेश्वर के अनुग्रह से मछली के पेट में जीवित था, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत में हम ये कहेंगे कि यह समस्त घटनाएं इस सत्य को दर्शाती हैं कि कोई भी व्यक्ति मच्छ के पेट में जीवित रह सकता है, परंतु यह विचार हमें योना के असाधारण अनुभव से दूर ले जाता है। और वो ये है कि यदि योना भी इन्हीं व्यक्तियों के समान महामच्छ के पेट में जीवित रहता है, तो योना की पुस्तक में जो कुछ वर्णन आप पढ़ते हैं वह वास्तव में कोई महान आश्चर्य कर्म नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। ये मात्र एक साधारण सी घटना का लेखा है जो किसी समय में घटी थी। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं कि महान आश्चर्य कर्म ये है कि परमेश्वर ने योना को मृतकों में से जीवित किया, और इसलिए इस घटना का लेखा योना की पुस्तक में रखा गया है। मेरे विचार से जबकि योना की पुस्तक पुराने नियम में हमें पुनरुत्थान की शिक्षा देती है, यह हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सिखाती है, और पुनरुत्थान हमारे उद्धार के दो मुख्य खंभों में से एक खंभा है जिस पर कलीसिया का जहाज टिका हुआ है। ये दो खंभे हैं मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु तथा उनका पुनरुत्थान। पुराना नियम इन दोनों के विषय में सिखाता है और योना की पुस्तक इसका चित्रण करती है। मुझे आशा है आप हमारे विचार को समझ रहे होंगे और ये भी समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या बात कहना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने योना के जीवन में उसे मृतकों में से जीवित करके एक महान आश्चर्य कर्म किया। तब तीसरे पद में योना बताता है कि तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तलहटी में डाल दिया और धाराओं ने मुझे घेर लिया, तेरी सब लहरें और तरंगे मुझ पर वेग से बह गईं। मित्र, हम इस बात को हल्की बात नहीं समझ सकते। यदि योना महामच्छ के पेट में रहा तो वह उसी के समान रहा, क्योंकि वह भी जल में डूबा रहा। वह कहता है कि तूने मुझे गहरे समुद्र में समुद्र की तलहटी में डाल दिया और धाराओं ने मुझे घेर लिया, तेरी सब लहरें और तरंगे मुझ पर वेग से बह गईं। योना बताता है कि जो अनुभव महामच्छ ने किया वही अनुभव मैंने भी किया। तब चौथे पद में हमको योना ने बताया है कि तब मैंने कहा, मैं तेरी आंखों के सामने से निकाल दिया गया हूं, फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर निहारूंगा। मित्र, योना परमेश्वर के सामने दीन हीन नम्र हो गया है। उसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया है। वो कहता है, यद्यपि मैं तेरी आंखों के सामने से निकाल दिया गया हूं क्योंकि मैंने तेरी दृष्टि में अपराध किया है, मैं तेरी इच्छा के विरोध में गया हूं, फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर निहारूंगा। योना अपनी मृत्यु के विषय में बता रहा है, फिर भी योना को विश्वास था कि परमेश्वर उसे मृतकों में से जीवित करेगा। योना का पालन पोषण नए नियम के अनुसार हुआ था। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि योना का पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा नए नियम के अनुसार हुई थी। योना मछली के पेट में से परमेश्वर के पवित्र मंदिर की ओर दृष्टि करता है। ये उसका पुराने नियम का विश्वास था। उनको बताया गया था कि उन्हें पवित्र मंदिर, अर्थात वो मंदिर जो यरूशलेम में है, उसकी ओर मुंह करके प्रार्थना करना है। हमने दानियल नबी की पुस्तक में भी इस विषय पर चर्चा की है। सो योना अपने विश्वास के अनुसार पवित्र मंदिर की ओर दृष्टि कर प्रार्थना करता है। योना को मृतकों में से जीवित होने पर, अर्थात पुनरुत्थान पर विश्वास था। तब पांचवें पद में वो बताता है कि जल से मैं यहां तक घिरा हुआ था कि मेरा दम घुटने पर था, गहरे सागर ने मुझे घेर लिया था, सिवार मेरे सिर के चारों ओर लिपटा हुआ था। मित्रवर, वास्तव में योना महामच्छ के पेट में पहुंच गया था। वह महामच्छ योना को लेकर समुद्र की तली में बैठ गया था, जहां मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सिवार समुद्री घास को कहते हैं और इस घास की लंबाई लगभग 25 फीट तक होती है। विशालकाय मच्छ इसे ऐसे निगल लेते हैं जैसे साधारण सी वस्तु, वो इसे भोजन के रूप में पूरा का पूरा निगल जाते हैं और वही सिवार उसके सिर से लिपटा हुआ है। तब छठे पद में योना बताता है कि मैं पहाड़ों की तलहटी तक उतर चुका था, भूमि के बंधनों ने मुझे सदा के लिए जकड़ लिया था, परंतु हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाल लिया है। मित्र, यहां पर योना स्पष्ट करता है कि मैं पहाड़ों की तलहटी तक उतर चुका था, भूमि के बंधनों ने मुझे जकड़ लिया था। यह सुंदर अनुवाद है एलिजाबेथी अंग्रेजी में। मृत्यु का वर्णन इसी ढंग से किया जाता है। योना जहां भूमि के बंधनों के विषय में बताता है, वह अपनी मृत्यु के अनुभव के विषय में बता रहा है। भूमि के बंधनों का तात्पर्य है मृत्यु, अर्थात कब्र। फिर वो कहता है कि परंतु हे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाल लिया है। यहां कोई संदेह नहीं कि यूना ने मृत्यु का अनुभव किया है। किंग जेम्स अनुवाद में अधोलोक के स्थान पर करप्शन शब्द का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य है सड़ना गलना अर्थात क्षय होना, जिसका सीधा अर्थ है मृत्यु। प्रेरित पत्रस ने पिंतेकुस्त के दिन इस शब्द का प्रयोग किया जब उसने यह बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने इस क्षय का अनुभव नहीं किया, अर्थात परमेश्वर ने उन्हें अधोलोक में सड़ने नहीं दिया। इस विषय में आप प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 25 से 32 पदों को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में महान आश्चर्य कर्म यह है कि जब वे मरे तो उनके शरीर ने क्षय अर्थात सड़ने गलने का अनुभव नहीं किया। योना भी इसी अनुभव के विषय में बताता है, यद्यपि उसने मृत्यु तथा अधोलोक का अनुभव किया किंतु परमेश्वर ने उसे अधोलोक में से निकाल लिया। स्मरण रहे, योना का अनुभव प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पूर्व संकेत है। मुख्य बात यह है कि योना महामच्छ के पेट में मर चुका था, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया। आश्चर्य कर्म इसमें नहीं कि योना 3 दिन और 3 रात अधोलोक में जीवित रहा। महान आश्चर्य कर्म यह है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, अर्थात योना का पुनरुत्थान ही महान आश्चर्य कर्म है। अब इन्हीं वचनों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।